सूरह निसा का सिलसिला जारी और सारी है, जो आयत पढ़ने का शरफ़ हासिल करा वो 103 आयत है, 103 आयत। इसका बैकग्राउंड पहले बता दूं आपको, जो इससे पहले की जो आयतें जो चल रही थी, अल्लाह सुब्हान व तआला उसमें खौफ की हालत में नमाज की बात कर रहा था कि खौफ की हालत में नमाज कैसे पढ़ो, और रसूल अकरम को अल्लाह ने सिखाया कि किस तरह नमाज़ पढ़ो खौफ की हालत में। अब इस आयत के अंदर अल्लाह सुब्हान व तआला ने कहा कि खौफ जब चला जाए तो किस तरह से नमाज पढ़ो, ये बैकग्राउंड है इसका। अब इसका तर्जुमा आप सुने, फ़ाइज़ा क़ज़ा तुमुस्सलात, जब तुम नमाज पढ़ चुको, कौन सी नमाज, खौफ वाली नमाज, फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिकुम, तो खुदा को खड़े बैठे और लेटे लेटे याद करते रहो। पढ़ ली नमाज, अब अल्लाह का जिक्र, अब तो नमाज तो हो गई है तुम्हारी, लेकिन अब तुम अल्लाह को खड़े बैठे हो लेटे लेटे याद करते रहो। नमाज तो हो गई थी, बात खत्म हो गई, वो एक ऑफिशियल ड्यूटी ख़त्म हो गई, लेकिन मेरी मोहब्बत किधर गई, अब मुझे याद करते रहो। क़ियामन क़ऊदन व अला जुनूबिकुम फ़ाइज़ा अतमन्नतुम, जब तुम इत्मीनान की हालत में आ जाओ, जब खौफ चले जाए, अब तुम इत्मीनान की हालत में आ जाओ, फ़अक़ीमुस्सला, तो तुम नमाज फिर पढ़ो, मतलब वो ही पढ़ो जिस तरह तुम पढ़ते आ रहे थे। इन्नस सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूदा, बेशक वक्त मोयन में मोमिन के लिए नमाज अदा करना फ़र्ज़ है, इसका तर्जुमा हुआ। तो इसका मतलब ये कि अगर आप जंग के मैदान में हैं, आपकी नमाज खौफ की ख़त्म हो गई, तब आप जंग लड़ रहे हैं, आप जंग में खड़े भी हैं, बैठे भी हैं, लेटे भी, हर पोजीशन में आप जंग करते हैं, उस हर वक्त आपको अल्लाह को याद करना है, हर वक्त आपको अल्लाह को याद करना है। ये जंग की हालत में भी है और अपनी रोज़ की हालत में भी यही कि अल्लाह को हर वक्त याद करे इंसान। किसी ने छठे इमाम से पूछा कि इसका क्या मुराद है कि इन सलात कानत अलल मोमिनीन किताब मौकूता से क्या मुराद है, तो मौलाना फरमाया इससे मुराद ये है कि नमाज जो वाजिब कर दी गई है उसमें अब कोई रद्दो बदल पेरदल नहीं होगा, जो है वो है, इसका मतलब ये है मौलाना समझाया। अब जो वाजिब है, अल्लाह ने पांच नमाजें वाजिब करी, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा, इसका मफहूम ये है। दुरूद पढ़ दें अल्लाहुम्म सल्ला अला मुहम्मद व आलिहि। अगली आयत का जो ज़ैल है वो ये है, पहले आयत का ज़ैल बता दूँ क्या बैकग्राउंड क्या है। जंग ओहद के बाद मुसलमान थक गए थे, जंग परेशान हो गए थे कि थक गए, मौला रसूल से कंप्लेन करने लगे, पर आयतें पढ़ चुके हम, आले इमरान में जिक्र हो चुका, तो अब हमको, हम थक रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, तो आयत नाजिल हुई वला तहिनु फिब्तिगा अलकौम इन तकूनु तअलमु फइन्नहुम यअलमु कमा तअलमून व तरजून मिनल्लाह ला यरजून व कानल्लाह अलीमन हकीमा। इसका यह आयत है, उनके पीछा करने में सुस्ती न दिखाना, तर्जुमा है, उनका पीछा करने में सुस्ती ना दिखाना। अगर तुमको तकलीफ पहुंचती है तो जिस तरह की तकलीफ तुमको पहुंचती है उसी तरह की तकलीफ उनको भी पहुंचती है, और जो जो तुम खुदा से उम्मीद रखते हो वो खुदा से उम्मीद नहीं रखते, और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने फरमा दिया कि ये जब 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 जंग ओहद ख़त्म हो गई और ये इस तरह से कुफ्फार को फतह मिली तो नारेबाजी शुरू हो गई थी, एक तरफ से अबू सुफियान नारे लगा रहा था, एक तरफ से रसूल अकरम नारे लगवा रहे थे, तो उन नारों के डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, एक तरफ से वो लात और उज्जा को अच्छा बता रहे थे, इधर से जोर से नारे चल रहे थे अल्लाह की शान में और अल्लाह पे तवक्कुल करने, आखिर में कंबख्त भाग गया। तो जब ये मोमिनीन थकने लगे थे तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहा कि उनका पीछे करने में सुस्ती मत दिखा देना तुम, वला तहिनु फिब्तिगाल कौम इन तकून तालम फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून, जिस तरह तुम थकते हो ऐसे वो भी थकते हैं, इन तकून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून, इसका तर्जुमा यह कि अगर तुम थकते हो, परेशान होते हो, जिस तरह तुम थकते हो वो भी थकते हैं, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वो खुदा से ऐसी उम्मीद होती जो तुम रखते हो। अब इसमें क्या है, इसमें वो डिटेल, इसमें डिटेल है कि अब जिस तरह से आजकल कुफ्फार जो मुसलमानों से जंग लड़ते हैं, फिलासफिकल जंग है, मटेरियल जंग है और लॉजिक की जंग है और मीडिया की जंग है और चौ तरफ जंग है मुसलमानों के खिलाफ। हमको चाहिए कि इसी तरीके से हम अपना दिफा करें, जिस तरह से कि वो तकलीफ उठाते हमको भी तकलीफ उठाना है, कि किस तरह से इस्लाम का दिफा किया जाए हर फ्रंट के ऊपर। वो न थके न कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम थकते तो भी थकते, जैसी हम खुदा से उम्मीद रखते हैं वो नहीं रखते। तो जब नारेबाजी चल रही थी तो आखिर में रसूल अकरम ने कहा कि फ़र्क तुम में हम में ये है, नारेबाजी जब हुई में कि हमारे वाले जन्नत चले गए तुम्हारे वाले दोजख चले गए। तो अल्लाह सुभान ये फरमाया जिस तरह तुम खुदा से उम्मीद रखते वो खुदा से उम्मीद नहीं रखते। अब ये जो आयतें जो शुरू हो रही हैं, बेहतर ये कि पहले मैं बैकग्राउंड बता दूं इन आयतों का, क्योंकि ये आयतें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, पहले बैकग्राउंड सुन लें ताकि उसके बाद आयतों का सिलसिला आसान हो जाए। पहले बैकग्राउंड सुन लेना, यह आयत नंबर 105 से शुरू हो रही है बैकग्राउंड में। मीज़ान ने बयान करा कि अंसार में से एक लोग थे, उनका नाम था बनू उबेरिक की कौम थी, बनू उबेरिक, उनके उसमें तीन भाई थे, एक का नाम था बशीर, एक का नाम था बिशर था और एक का नाम था मुबशिर। तीन थे, ये हिपोक्रेट थे, ये मुनाफिकीन थे। तो एक बदरी शख्स था, जंग बदर में जो गया था, उसके एक अंकल थे, अब मामू थे कि चाचा ये नहीं मान लो मुझे। इस बदरी शख्स जवान का नाम था कतदा, कतदा इसका नाम था जवान का। तो इन तीनों ने रात के वक्त उसके मामू या चचा के घर में चोरी करी। तो चोरी में यह हुआ था कि उसने अपनी तलवार और अपनी जिरा रखी थी घर में छुपा के एटिक पे, तलवार जिरा और खाने का कुछ सामान था। तो ये तीनों ने प्लान बनाया और उस जब ये प्लान बना रहे थे तो एक शख्स था मोमिन, उसका नाम था लुबैद इब्ने सहल, उसका नाम था लुबैद इब्ने सहल। तो वो देख रहा था ये जो हरकतें कर रहे थे, वो ये गए, उन्होंने चोरी करके सामान ले आया। अब सुबह में जब देखा उसके चचा या मामू ने कि ये मेरे घर में चोरी हो गई, तो अपने नेफी को बोला कि बेटा चोरी हो गई। कतादा को कहा, जो कि बदरी थे, कि चोरी हो गई बेटा। तो ये रसूल के पास आए, कहा कि रसूल अकरम मेरे अंकल के चोरी हो गई है और ये बनू उबरेक के लोगों ने चोरी करी है, क्योंकि जो उनको मालूम पड़ गया था कि बनू उबरेक के लोगों ने चोरी करी है। तो ये जो भाई थे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया लुबैद इब्ने सहल पे, जो कि मोमिन एक मोमिन थे, कि चोरी तो उसने करी है। तो लुबैद को बहुत गुस्सा आया। तो लुबैद ने कहा, अगर तुमने मेरा मुझसे इल्ज़ाम न छुड़वाया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो ये लोग तीनों भाई डर गए, तो कहा नहीं नहीं तुमने चोरी नहीं करी। फिर वो एक शख्स के पास गए, ये तीनों भाई, उसका नाम था उसैद इब्ने उरवा, और जाके उससे कहने लगे कि देखो हमारे खानदान का नाम बिगाड़ रहे हो, हमने चोरी नहीं करी थी और ये बदमाश लोग हैं और हम जैसे शरीफ लोगों को सब झूठा इल्ज़ाम लगा रहा कतादा, तुम जाके तुम अच्छा बोलते जाके रसूल अकरम से कहो कि ये हरकत हमारे साथ हो रही है। तो ये उसैद इब्ने उरवा गया और रसूल से कहा कि इतने शानदार बनू उबरेक के लोग वो कतादा ना के जलील करा, झूठा इल्ज़ाम लगाया सरकार। तो सरकार ने बुलाया इनको कतादा को और कहा कि देखो इतने शरीफ लोगों पर तुमने बगैर सबूत की इल्ज़ाम लगाया, तुमने बहुत बुरी हरकत करी है। ये मैं मीज़ान पढ़ रहा हूँ, वॉल्यूम नंबर 9 पेज नंबर 118 पढ़ रहा हूँ हवाले के लिए। कहा गए तुमने बहुत बुरा करा है। तो इनको बेचारों को बड़ा बुरा लगा। कतादा को और अपने अंकल के पास गए कि अंकल काश मैं जिंदा नहीं रहता जिस तरह रसूल अकरम ने मुझे डांटा है, और ये काश मैं बात कंप्लेन करता ही नहीं रसूल अकरम से, मेरी हालत हो गई। तो उनके चचा ने मामू चचा जो भी थे कहा कि बेटा इसमें हम अल्लाह से ही मदद मांगेंगे इस मामले। तो ये आयतें नाजिल हुई, सुभान अल्लाह। अब आयतों में मजा आएगा इंशाल्लाह, अब आगे बैकग्राउंड समझ में आएगा इंशाल्लाह। दुरूद पढ़ना अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना, यह आयत नंबर 105, इन्ना अंजलना इलैकल किताबा बिल हक़ लितहकुम बैनन नास बीमा अराकल्ला वला तुकुल्लिल खाइनीन खसीमा। हमने तुम्हारे ऊपर सच्चाई के साथ किताब नाजिल करी ताकि तुम लोगों के बीच में जैसा हमने तुमको दिखाया इंसाफ के साथ फैसला कर दो। तहकुम में इंसान है ताकि तुम लोगों के बीच में जैसा हमने तुमको दिखाया फैसला कर दो और तुम किसी खयानत करने वाली की तरफदारी न करना। अब समझ आ रही ना, थे स्टोरी सुन ली थी, अब अल्लाह क्या कह रहा है, रसूल अकरम से कह रहा है कि हमने तुम्हारे ऊपर सच्चाई के साथ किताब नाजिल करी ताकि तुम लोगों के बीच में फैसला कर दो जैसा हमने तुमको दिखाया। इमा अराक अल्लाह, अराक किसको कहते हैं, देखने को, जैसा हमने तुमको दिखा दिया है। वला तो कुल्लिल खाइनीन खसीमा, और किसी खैरत करने वाली की तरफदारी ना करना। अब बैकग्राउंड तो मालूम हम लोग को, अब आया समझ में आ रही है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने रसूल को तंबीह करी कि देखो ऐसा है कि इस किस्से के अंदर जिस तरह हमने तुमको किताब नाजिल करी हक के साथ, उस तरह से फैसला करो और किसी खयानत करने वाले की तरफदारी ना कर देना रसूल, क्योंकि तो खयानत करने वाले थे ना बदमाश, खुद चोरी करी और बेचारे उसको लुबेद पे इल्ज़ाम लगाया और इसको लेके आए उससे इसको हमारी तरफ से बोलो, और रसूल अकरम को सिखा रहे हैं माज़ अल्लाह के देखो ये सही है गलत। अल्लाह सुब्हान तआला ने इस आयत से नाजिल करके बताया, मीज़ान ने कहा बीमा आरा करना से क्या मतलब है, जिस तरह अल्लाह ने दिखाया है। बड़ी गहरी बात मीज़ान में है कि रसूल अकरम के जितने फैसले होते थे अल्लाह की मदद से और किताब और दानाई से होते थे। रसूल को किताब का इल्म तो था, अल्लाह ने सिखाया था, लेकिन किसी भी केस के अंदर रसूल को रूल तो मालूम थे, तवज्जो चाहता हूँ, रसूल को रूल तो मालूम थे, लेकिन हर केस को फैसला में जो भी अल्लाह रसूल को फैसला करते थे उसमें डिवाइन डिक्री की सील लगती थी, मोहर लगती थी। वो मोहर कैसे लगती थी कि रसूल ने जो फैसला करा वो हक है अल्लाह की तरफ से, वो कैसे लगता था उसमें, क्योंकि रसूल को इल्म था फिक का, लेकिन वो फाइनल डिग्री अल्लाह की मोहर से लगती थी, वो कैसे लगती थी, बीमा अराक अल्लाह, जब रसूल अकरम जब मुकदमा होता था तो अल्लाह को दिखा देता था कि इस केस में ये फैसला है, बीमा अराक जो अल्लाह दिखा देता था, अल्लाह की मदद शामिल होती थी। तो कहा जिस तरह हमने तुमको दिखाया है इस तरह से फैसला करो, वो किसी खयानत करने वाले की तरफदारी न करना। इसके आगे की आयत बड़ी सेंसिटिव है।